Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai.
शारद हरि भगवान की, श्री जगन्नाथ बंदे सुभद्रा माय की, श्री गौर निताय की, श्री गोपाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोरजय मुदीरये। अध्याय 12 और श्लोक संख्या 37। एतत् कुमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम्, मृत्योपोगण्डके बाला दृष्टो चुर्विस्मिता व्रजे। एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम्, मृत्योपोगण्डके बाला दृष्टो चुर्विस्मिता व्रजे। एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम्, मृत्योपोगण्डके बाला दृष्टो चुर्विस्मिता व्रजे। अघासुर तथा कृष्ण के संगियों के उद्धार की यह घटना कोमारजम कर्म कोमार अवस्था में संपन्न हरे भगवान की आत्मा, भक्तजन भगवान की आत्मा है। अहिमोक्षणम उनका मोक्ष तथा अजगर का मोक्ष, मृत्यु जन्म मरण के मार्ग से कोगंड अवस्था में जो 5 वर्ष के 1 वर्ष बाद शुरू होती है। बालहा सारे बालक दृष्ट्वा ऊचुहु 1 वर्ष बाद यह बात प्रकट की। विस्मिता मानो उसी दिन की घटना हो। ब्रजे वृंदावन में अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा स्वयं तथा अपने साथियों को मृत्यु से बचाने तथा अजगर रूप अघासुर को मोक्ष देने की घटना तब घटी जब कृष्ण 5 वर्ष के थे। इसका उद्घाटन ब्रज भूमि में 1 वर्ष बाद हुआ, मानो यह उसी दिन की घटना हो। तात्पर्य मोक्षणम शब्द का अर्थ है मोक्ष, कृष्ण के साथियों के लिए तथा कृष्ण के अपने लिए मोक्ष का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वे आध्यात्मिक जगत में होने से पहले से मुक्त हैं। भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा तथा रोग होते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो हर वस्तु शाश्वत है, किंतु अघासुर ने भी कृष्ण तथा उनके भक्तों के सानिध्य से शाश्वत जीवन की वही सुविधाएं प्राप्त कर ली। इसलिए आत्मा ही मोक्षणम शब्द से इंगित किया गया है कि यदि अघासुर को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सका तो उनके विषय में क्या कहना जो पहले से ही भगवान के संगी है। साकम जीवद कृत पुण्य पुंजः भागवत 10:12-11। यहाँ पर इसका प्रमाण है कि ईश्वर हर एक के लिए शुभ है। यहाँ तक कि जब वे किसी को मारते हैं तो उसे मुक्ति मिल जाती है, अतः उनके विषय में क्या कहना कहा जाए जो पहले से भगवान की संगति में है। श्री गोपाल की नवलचन कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवमं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सह गणललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपिकाकांतम राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि शिवोर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दर्ण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वयं न जाने जयतां सुरतों पंगुं मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पदां भोजो श्रीराधा हरे कृष्ण। इस भागवत सत्र में पधारे हुए आप सभी भागवत प्रेमी भगवत प्रेमी भगवत कथा प्रेमी एवं भक्तजनों में स्वागत है श्री राधा गिरधारी प्रांगण में। भगवान की कृपा से उनकी कथा सुनने का अवसर मिलता है और रसज्ञ जो भक्त हैं मर्मज्ञ है कथा के महात्म्य को जानते हैं। ऐसे भक्त भगवान की कथा सुनने की इच्छा करते हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं भगवान श्रोतुम इच्छामि, हे प्रभु मैं सुनना चाहता हूँ कृष्ण कथा, आप मुझे सुनाइए। और साथ ही साथ परीक्षित महाराज को जो कथा सुनते सुनते जो अनुभव हुआ है, क्योंकि भागवत में बार बार जहाँ भी प्रसंग बदलता है या कहीं कहीं उत्कंठावश परीक्षित महाराज कह देते हैं कि आप और कथा सुनाइए, मुझे इसमें रस आ रहा है, स्वादु स्वादु पदे पदे। तो दशम स्कंध में स्थान पर वो कहते हैं कि ब्रह्मन कृष्ण कथा पुण्य, ब्रह्मन कृष्ण कथा पुण्य माधवीर लोक मलापहा। हे प्रभु ये कृष्ण की कथा कैसी है? बोले पुण्य, पहले तो ये पुण्य है, पुण्य का अर्थ है पवित्र है, जो सुनता है उनको पवित्र करने वाली है। संसार में प्राय लोग हम सब भगवान से विमुख होकर के इस जड़ जगत में कलुषित हो गए हैं, अपवित्र हो गए हैं, अपने आत्मा से च्युत हो गए हैं, गिर गए हैं अपने स्थान। तो ऐसे अपवित्र जो कर्म का मेल चित्त पर लगा हुआ है, उनके चित्त को शुद्ध करने वाली एक पुण्य कथा है। इसलिए आप इसे सुनाइए। शुभ परीक्षित कहते हैं कि जिससे मेरे मन में यदि परिवार के प्रति, संसार के प्रति जो लेश मात्र भी चित्त जो कलुषित है वो शुद्ध हो जाए। तो ब्रह्मन कृष्ण कथा पुण्यम माधवी लोक मलापहा, इनकी विशेषता बता रहे। एक तो ये पुण्य है, पवित्र है, पवित्र करने वाली है। दूसरा माधवी, माधवी माने मधुर, भगवान की कथा मधुर है, सुनने में मधुर है, क्योंकि वो भगवान का विग्रह, उनका सब कुछ मधुर है। अधरम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम, उनका सब मधुर है, उनका दर्शन भी मधुर है, उनका वचन भी मधुर है, उनकी आंखें मधुर हैं, उनका चलना भी मधुर है, उनका बोलना मधुर है, सब मधुर है। तो फिर उनकी जो कथा है वो भी मधुर ही है। और ऐसी मधुर कथा को जब सुनते हैं, किसी के कर्ण में प्रवेश करती है मधुर कथा, और ये मधुर का मधुरता को हृदय में अनुभव करके फिर वो संसार की कोई भी जो छोटी मोटी सुख या मधुरता दिखाई देती है उसके प्रति आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि भगवान की कथा इतनी मधुर है। यहां तक कि वेदों में बताए गए अन्य साधन जो है, या भगवान को तीन रूप में जाना जाता है, परमात्मा, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, तो जो ज्ञान मार्ग के पथिक हैं, जो योगी हैं और जो ब्रह्म सुख का आनंद लेते हैं, वो भी जब कृष्ण की मधुर लीलाओं को सुनते हैं तो उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। इसके उदाहरण है शुभदेव गोस्वामी, आत्मराम थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म का सुख मिल रहा था, लेकिन जैसे ही भगवान के रूप के बारे में सुना, उनके गुणों के बारे में सुना, श्री राजा के सारे भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माया की, शिशि गौर निदाय की, श्री गोपाल की, तो जब उन्होंने कृष्ण की इन मधुर गुण और रूप की लीलाओं को सुना तो वह आकृष्ट हो गए और ब्रह्म सुख को त्याग करके इस कृष्ण कथा को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए वो वेदव्यास के पास चले आए। तो ब्रह्मन कृष्ण कथा पुण्य माधवी लोक मलापहा, एक तो मधुर है और लोक मलापहा, लोक का जो मल है, इस संसार लोक का क्या मल है, बोले ये संसार ही एक मल है। वास्तव में हम भगवान के अंश ऐसे आत्मा के लिए ये संसार एक मल है, परंतु हमारी बुद्धि माया के द्वारा हर ली गई है, इसलिए संसार मल में भी हमको सुख मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि भगवान के द्वारा, भगवान की माया के द्वारा हमारी बुद्धि हर ली गई है, इसलिए वो ख्याल नहीं होता है कि ये मल है। परंतु कृष्ण कथा सुनते सुनते जिनकी मति शुद्ध हो जाती है, भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, जो मेरा सतत कीर्तन करता है, मेरी कथा को सुनता है, ददा बुद्धि योगम, मैं जब उसको बुद्धि देता हूं तब वो उस बुद्धि से ख्याल करता है कि अरे मैं कहां आ गया, इस संसार में रम गया, कहां मैंने अपना समय गवा दिया। ये बुद्धि बाद में आती है। भागवत में ऐसे कई इतिहास है बड़े बड़े राजा कि जब उनको ख्याल हुआ है तब उन्होंने गाया है ना। भागवत में एक एल राजा की कथा है, एल एल गीत है पूरा, जो भगवान के द्वारा उद्धव को सुनाया गया है। और उसने वो राजा की कथा है, क्या नाम है उस राजा का, पुरुरुवा, चंद्रवंश के राजा है पुरुरुवा। तो उनको जब ये ख्याल हुआ कि अरे मैंने मेरा पूरा समय, क्योंकि उर्वशी के साथ उनका विवाह हुआ, उर्वशी भी उनके उनमें मोहित हो गई थी और उनके साथ उन्होंने अपना लंबा समय जब बिता दिया और जब ज्ञात हुआ भगवान की कृपा से, और तब वो कहते हैं कि अरे मेरे बिना कितना समय इस संसार में गवा दिया, जो मलवत है जिसमें कोई तथ्य नहीं है। तो ये लोक जो है मल है, संसार एक मल है, परंतु हम संसार को पकड़े हुए, हमारे हृदय में संसार बसा हुआ है ना। संसार माने परिवार की आसक्ति, धन की आसक्ति, भोगों में आसक्ति, विषयों में आसक्ति, ये सब संसार। और ये मल रूपी संसार जो है हमारे चित्त में दसा हुआ है। परंतु कृष्ण कथा लोक मलापहा, ये भगवान की कथा सुनने से ये जो मल है वो नष्ट हो जाएगा और हम अपने प्रियतम परम प्रेमी स्नेही ऐसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे इस कृष्ण कथा सुनने से। तो हम लोग यहाँ पर इस कृष्णा की मधुर बाल लीलाओं को सुन रहे हैं, है ना। और आज का जो श्लोक है यहाँ पर सुना जा रहा है कि भगवान रोज कृष्ण अपने बाल मित्रों को लेकर के वन में चल देते हैं बछड़ों के साथ, और वहां जाकर तरह तरह की लीला करते हैं। तो इसमें कंस जो है अलग अलग खिलौना भेजते हैं, क्योंकि यहाँ तो भगवान खेल रहे हैं, खेलने की लीला कर रहे हैं, यहाँ कोई शस्त्र वस्त्र धारण नहीं करते हैं। असुर को भी भेजते हैं, उसको खिलौना समझकर खेल खेलने उसको खत्म कर दिया जाता है। कंस भेजता है, कभी गुड़िया भेजता है, कभी बैलगाड़ी भेजता है खिलौने के रूप में शक्तासुर को, कभी बगुला भेजता है ना, क्या क्या नहीं भेजता है। परंतु कृष्ण जैसे बच्चा खेल खेल में उस खिलौने को खत्म कर देता है, तोड़ देता है, वैसे तोड़ दे रहे हैं खेल खेल में ना यार। ऐसा नहीं कि कोई बल का प्रयोग करना पड़ता है, कोई शक्ति को याद करना पड़ता, नहीं, वो तो अपनी बस्ती में खेल रहे हैं। यही प्रभु की लीला और यही है सर्वोपरि भगवान, जो खेल खेल में ही सब कुछ खत्म कर देते हैं। तो वैसे एक असुर आया था जिनका नाम था अघासुर, जो आपने कथा सुनी, और अजगर के रूप में आया था, परंतु भगवान तो खेल रहे हैं पर उसके साथ जो बाल मित्र हैं वो भी अपनी मस्ती में खेल रहे हैं, है ना। क्योंकि कृष्ण के साथ जो खेल रहे हैं उनको बड़ी क्या चिंता होगी, है ना। इस संसार में साधारण खेल में भी बच्चे जब रम जाते हैं तो उनको कोई ख्याल नहीं रहता, न भूख का न प्यास का। तो ब्रज भूमि तो वैसे ही ऐसा स्थान है कि जहां पर भूख प्यास नहीं लगती, है ना। भगवान का लोक, भगवान का धाम ऐसा है कि जहाँ भूख प्यास बाधित नहीं करती। अरे जिस भगवान की कथा इस संसार में कोई सुनता है उनको भी भूख प्यास बाधित नहीं करती है, तो भला उनके संग में जो लोग रहते हैं उनका क्या सुख होगा, है ना। इसीलिए भक्त भगवान के संग में रहने का लोभ करते हैं, और ये लोभ होता है कथा से। तो बाल मित्र उनके साथ खेल रहे हैं और वो खेल खेल में बड़े से बड़े असुर आते हैं, परंतु कृष्ण उसको खेल खेल में खत्म कर देते हैं। इसलिए बाल मित्र जो है, बाल सखा, वो किसी असुर से नहीं डरते हैं। और अघासुर जब अपना मुंह फाड़ करके बैठा था तो बाल मित्र ने सोचा कि ये क्या है, लगता है बहुत सुंदर गुफा है और हम लोग जाएंगे और जा करके भोजन करेंगे, इसमें आनंद लेंगे। लेकिन उनको नहीं पता है कि ये तो बहुत बड़ा असुर है। तो कई बार वो सोच रहे कि अरे ये असुर तो नहीं होगा, क्योंकि बार बार ऐसा अटैक करते रहते हैं असुर ब्रज में। तब वो तुरंत ही कृष्ण के सामने देखते हैं कि अरे ये बकारी है। ये बकी को मारने वाले बकारी, बकासुर को मारने वाले, पुतना को मारने वाले जो हैं हमारे साथ हैं, यदि असुर भी होगा तो हमें कुछ नहीं होने देंगे, ऐसा विश्वास है भगवान के। भक्तों, भक्ति का अर्थ है कि विश्वास। हमारी भक्ति बढ़ रही है या घट रही है, हमारा विश्वास भगवान में कितना बढ़ रहा है उसके ऊपर आधारित है। हमारा ज्ञान कितना बढ़ रहा है, है ना, हमारे ये कितना बढ़ रहा है ज्ञान, उससे मतलब नहीं, हमारा विश्वास कितना बढ़ रहा है भगवान के प्रति, ऐसी भक्ति। तो उन गोप बाल मित्रों को भगवान पर अटूट विश्वास था कि ये हमें कुछ नहीं होने देंगे, अवश्य रक्षी दे कृष्ण, शरणागति का लक्षण। और इस प्रकार कृष्ण के सामने देखते देखते वो अपनी मस्ती में ताली बजाते हुए वो उस अघासुर के मुख में प्रवेश कर जाते हैं, बिल्कुल गाते हुए नाचते हुए, क्योंकि उनको कोई चिंता नहीं, वो कृष्ण पर निर्भर है। इसलिए जो कृष्ण पर निर्भर अपना सब कुछ, अपने जीवन का रथ जो कृष्ण के हाथों में सौंप देते हैं, वो निश्चिंत हो जाते हैं। वैसे संत महापुरुष, वैसे भागवत एक बालक की तरह संसार में विचरण करते हैं, गाते हैं, ताली बजाते हुए मस्ती में घूमते हैं, क्योंकि वो भगवान पर निर्भर है। तो बालक सब भगवान पर निर्भर होते हुए अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए, और जब प्रवेश कर गए तो भगवान ने देखा कि अब मुझे कुछ करना होगा, क्योंकि जब भक्त अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ करके भजन में लग जाते हैं तब भगवान चिंता करते हैं, परंतु जब तक हम हमारी चिंता करते हैं तब तक भगवान चिंता नहीं करते है? हम जब तक हमारे कार्यों में आगे बढ़ जाते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम ये करेंगे, इस अहंकार में जब कार्य करते हैं तो भगवान ध्यान नहीं देते, बोले ये तो अपने आप कर रहा है। परंतु जब सारा सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया जाता है तब भगवान टेंशन में आते हैं कि अब इसका क्या होगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा, और तब भगवान उनके जीवन की डोरी अपने हाथ में लेते हैं और उनकी सभी आवश्यकताओं को, सभी चीजों का ख्याल रखते हैं। जैसे एक बालक अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, और माता बालक जब माता पिता पर निर्भर रहते हैं तो माता पिता उस बालक की चिंता करते हैं, लेकिन जब बड़ा हो जाता है और अपने आप जब सब कुछ करने लगता है तो माता पिता इतनी चिंता नहीं करते हैं। तो आचार्य गण कहते हैं कि वास्तव में जो भक्ति मार्ग के पथिक हैं वो उस छोटे बालक की तरह है, और ज्ञान मार्ग के जो पथिक हैं वो बड़े बालक की तरह है। जो बड़ा हो गया है वो अपने आप कर रहा है, लेकिन जो भक्त है वो हर पद पर, हर मोड़ पर भगवान पर निर्भर रहता है। तो इस प्रकार जब अघासुर ने बालकों को निगल लिया तो भगवान भी उनकी रक्षा करने के लिए उसके मुंह में प्रवेश कर गए, और जाकर के उन्होंने उस बालकों की रक्षा कर ली और अघासुर का वध कर दिया। तो आज के इस श्लोक में बताया गया है कि एतत् कौमारजं कर्म, कह रहे हैं कि भगवान ने जब अपने साथियों को रक्षा कर ली, हरेर आत्मा ही मोक्षणम, यहां पर एक बहुत सुंदर अर्थ दिया गया, हरेर आत्मा, हरे माने भगवान, भगवान के बहुत सारे नाम है, उनमें से एक नाम है हरि या हरे। तो भगवान ने, हरि का नाम है चैतन्य महाप्रभु, हरेर नाम का दो अर्थ मुख्य बता रहे हैं, दो ही मुख्यतम, हरेर नाम अनेक अर्थ, अनेक अर्थ है लेकिन दो मुख्यतम है। एक तो सर्व अमंगल हरे इति हरि, जो अपने आश्रित का सर्व कुछ अमंगल हर लेते हैं, और प्रेम दिया हरे मन, और प्रेम देकर के भक्तों के मन को हर लेते हैं। तो ऐसे हरेर आत्मा, हरेर आत्मा माने भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के आत्मा होते हैं, प्राण होते हैं, और अपने आत्मा किसको प्यारी नहीं होती, अपना प्राण किसको प्यारा नहीं होता है ना। संज्ञा संसार की सब चीज से बढ़कर व्यक्ति को अपने आप का अपना आत्मा प्यारा होता है। तो वैसे ही भगवान को इस संसार की या अपनी सब कुछ को छोड़कर अपने भक्त इतने प्यारे हैं, कैसे बोले आत्मवत। जैसे कि व्यक्ति को अपना शरीर है ना, शरीर को भी कभी आत्मा कहा जाता है गीता में। तो जैसे व्यक्ति को अपना शरीर प्यारा है, वैसे ही भगवान को भक्त प्यारे हैं, है ना। जब व्यक्ति का शरीर खराब होता है या बीमार पड़ता है तो संसार की किसी भी चीज में कार्य में नहीं कार्य करता है, वो केवल फिर अपने शरीर को ठीक करने के लिए प्रयास करता है ना। अपने बिजनेस को भी थोड़े दिन के लिए छोड़ देता है ना, सब कुछ। तो वैसे ही भगवान के आत्मा होते हैं उनके भक्त। तो हरेर आत्मा की मोक्षणम, भगवान ने अपने भक्तों का उद्धार किया, मतलब मोक्ष किया। मोक्ष का अर्थ है, तात्पर्य में लिख रहे प्रभुपाद जी कि अब भगवान के भक्तों के मोक्ष का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि जो नित्य भगवान के संग में रह रहे हैं अब उनको मोक्ष की क्या आवश्यकता है। परंतु अघासुर के मुख से भगवान ने उनको उद्धार निकाल लिया, अर्थात दूसरा अर्थ कि भगवान जो है, जो उनका भक्ति करते हैं, उनके भक्त होते हैं, उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल लेते हैं। गीता में भगवान वचन दिए ना कि मैं मृत्यु से ऐसे भक्त को तुरंत ही निकाल लेता हूँ, उद्धार कर लेता हूँ। तो आत्मा ही मोक्षणम, भगवान ने अपने भक्तों को उस अघासुर के मुख से बचा लिया, जो अघासुर के प्रभाव से मूर्छित या मर ही चुके थे, लेकिन उनको ही वापस अपनी कृपा दृष्टि से भगवान ने बाहर निकाल लिया। और साथ ही साथ मृत्यु पोगंड के वाला दुष्टोर सुविस्मिता ब्रजे हैं, कहते हैं कि भगवान ने अघासुर एतत माने अघासुर को मार दिया, परंतु मार कर भी उनको भी मोक्षणम, उनके लिए भी मोक्ष शब्द लगा है ना। इनको मार भी दिया तो भी मुक्ति प्रदान कर दी, यह भगवान की विशेषता। वो जिनको मार भी देते हैं तो कैसे उनकी मुक्ति हो गई, बोले भगवान की विशेषता है ना। उनके शरीर का स्पर्श कोई कर लेता है तो उनका ऐसा मुक्ति प्राप्त हो जाता है। अरे पूतना जब मर गई, भगवान ने मार दिया तो उनका भी उद्धार हो गया, यहां तक कि उनका शरीर जो भगवान के श्री विग्रह से स्पर्श हुआ था उसमें अगरू की सुगंध आने लगी। ये भगवान का प्रभाव है। और यहां पर अघासुर जब मर गया तो मोक्ष हो गए। तब कहते हैं कि फिर जो लोग नित्य उनके संग में है, जो बाल सखा है ना, उनके साथ खेलते हैं, रोज उनको देखते हैं, उनका स्पर्श होता है, उनको श्रृंगार करते हैं, इन भक्तों के बारे में क्या कहा जाए। मतलब उनको कोई मोक्ष की आवश्यकता नहीं है, परंतु भगवान ने उनको अघासुर के मुख से बचा लिया। तो एक बात कह रहे हैं कि मृत्यु पोगंड के बाला दृष्टोर चुविस्मिता व्रजे, यहां पर कहा गया है कि ये जो घटना है भगवान ने पोगंड अवस्था में कोमार अवस्था में की थी, और इसका ब्रज में उद्घाटन हुआ पोगंड अवस्था। थोड़ी अटपटी बात लग रही है। कुमार माने 5 साल की उम्र, 5 वर्ष की उम्र को कुमार अवस्था कहते हैं, और 6 से 10 की जो उम्र है उसको पोगंड अवस्था कहते हैं। तो भगवान ने लीला जो की थी 5 वर्ष के अंदर, मतलब 5 साल से तब, और व्रज में इस लीला का उद्घाटन हुआ जब 6 साल के हो गए, 6 साल के कुछ अंदर, मतलब 1 साल के बाद व्रज में इस लीला का उद्घाटन हुआ। कहने का अर्थ है कि ब्रज में जब गोप बालक भगवान के साथ जब जाते थे रोज लीला के लिए, बछड़े को चराने के लिए, तो रोज कुछ न कुछ घटना घटती थी, है ना। कभी कोई असुर आ जाता था, कभी कोई असुर नहीं आ जाती थी, और कभी कोई बड़े बड़े देवता दर्शन के लिए आ जाते थे, कभी चार मुख वाले ब्रह्मा आ जाते थे, कभी शिव जी बड़ी जटा वाले आ जाते थे। तो ये गोप बालक वन में, वृंदावन में जो जो घटना गोचारण के वक्त जो घटती थी, तो ब्रज में आकर वो रोज अपने और सखाओं को या अपने ब्रजवासियों को, अपने बाबा को, मैया को सुनाते थे, शेयर करते थे आज की भाषा में, है ना। जैसे संसार में मित्र संसार की कुछ बातें आपस में शेयर करते हैं, जो थर्ड क्लास बातें होती हैं। तो ये भक्त जो है ब्रज में इन भगवान की लीलाओं को शेयर करते थे आकर के शाम को, कि आज क्या घटना हुई, आज कृष्ण ने अपने वीर्य पराक्रम से क्या किया, आज खेल खेल में किसको मार दिया, ये सब चर्चाएं होती रहती थी। भक्तों, ये भगवान की इस प्रकार की चर्चा को करना आपस में, यही को भक्तों का जीवन होना चाहिए। ये ब्रजवासी बालक हमको सिखा रहे हैं, ब्रजवासी सिखा रहे हैं कि वो बालक जब रोज घर जाते थे तो आपस में शेयर करते थे भगवान, क्योंकि यही भक्तों का जीवन है। क्योंकि भगवान के ऐसे गुणगान, उनके गुण रूप लीला और वीर्य पराक्रम की जो गाथा है, वो जब हम सुनते हैं या आपस में कहते हैं, तो इससे जो है उस गुणों को सुनने से और कहने से हमारा हृदय शुद्ध होता है और हमारा चित्त भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है, हमारा मन भगवान में लगता है, है ना। क्योंकि जब सुनते हैं, बोलते हैं, इसी से जो है हमारे मन में कुछ बातें दसती हैं, है ना। आज हमारे मन में अच्छे या बुरे विचार आ रहे हैं किसके कारण, जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, जो हमने बोला है, वही सारी चीजें अंदर आती हैं। तो गीता में भगवान कहते हैं कि मुझ में मन लगाओ तो कैसे लगेगा, बोले उनके बारे में सुनने से, उनके बारे में उनको देखने से, उनके बारे में कहने से, स्मरण करने से मन जो है वो लगेगा। तो वास्तव में भक्तों, कभी कभी हमारे मन में भी ऐसा प्रश्न होता है कि अरे भगवान कब मिलेंगे, ऐसी लालसा भी होती है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान में मन लग जाना और भगवान का मिलना, ये अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। कथा सुन सुन करके हमारा मन ये कृष्ण की कथाओं को चिंतन करने लग जाता है, मन लग जाता है भगवान की सेवा में, तो मन का लगना और भगवान मिल जाना उसमें कोई अंतर नहीं है, वो एक ही चीज है ना। जैसे भागवत के दशम स्कंध में रुक्मणी का प्रसंग आता है, श्रुतवान गुणान भुवन सुंदर, वो अपने पत्र में लिख रही है कि मैंने आपके गुणों को सुना, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुणवतांते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतांगतापम दृष्टिम दृष्टिशाम अखिलार्थ लाभम। आपको देखने से दृष्टि वालों का अखिलार्थ लाभ है। और अंत में वो कह रहे हैं कि चित पत्र पम में, वहां बहुत सुंदर बात है कि भगवान के गुणों को रुक्मणी ने जब सुना था तो सुनते सुनते उनका मन भगवान में लग गया था। और जब किसी का मन, किसी का चित लग जाता है तो भगवान पूछे कि कैसे पता चले कि तुम्हारा मन मुझ में लग गया है। मान लो आचार्य कहते हैं तो चित्र पत्र पम में, अंत में उन्होंने लिखा है कि मेरा निर्लज चित्त आप में लग गया है। क्या प्रमाण है, बोले यही प्रमाण है जो मैंने आपको पत्र लिखा। क्योंकि रुक्मणी जो है उच्च घराने की कन्या है ना, भीष्मक राजा की कन्या है। और जब कोई उच्च कुल की कन्या जो है कभी भी अपने माता पिता की परमिशन के बगैर किसी को नहीं मिलती है, या किसी पराय पुरुष को इस प्रकार का पत्र नहीं लिखती है, जो उच्च कुल की कन्या है तो कभी अपनी मर्यादाओं को भंग नहीं कर रही करती है, और मैं भी नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करूं, चित्त पत्र पम्य, आपकी कथा को सुनकर मेरा चित्त आप में लग गया है और ऐसा लग गया है कि वो निर्लज हो गया, इसलिए मैंने किसी की परमिशन लिए बिना ही आपको पत्र लिखा। तो भगवान की कथा सुनकर मन उसमें लग जाता है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जब मन लग गया, भगवान जब मन में आ गए तो आंखों के सामने आते उनको देर नहीं लगेगी, जैसे मन में आ गए वैसे एक दिन सामने भी वो आ जाएंगे। इसलिए मन लग जाना और मिल जाना उसमें अंतर नहीं है। तो भगवान के गुणों को सुन करके कह करके मन लग जाता है। तो ब्रजवासियों का मन वैसे सतत भगवान की चर्चाओं को सुनने में, आपस में कहने में, भगवान में लगा रहता है। और जब किसी का मन भगवान में लगा रहता है, भगवान के चिंतन में, तब भगवान का मन भी उस भक्त के चिंतन में लग जाता है। जब उस ब्राह्मण ने रुक्मणी का पत्र जब कृष्ण को सुनाया और जब सारा पत्र कृष्ण ने सुन लिया, तब कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण, जैसे रुक्मणी का मन मुझ में लगा हुआ है, उनका चिंतन जब मेरे बारे में चिंतन कर रही है, उनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, वैसे ही यथामपि तत्चितो मित्राच न लभे निशी। कहते हैं कि तथामपि, जैसे उनका चित्त मुझ में लगा है वैसे मेरा चित्त उनमें लगा है, और इसके कारण है ब्राह्मण मुझे रात भर नींद भी नहीं आती। गीता में भगवान कहे ना, यथा ये यथा माम परमस्ताम तथेव भजाम्य हम, जैसे भक्त मेरा चिंतन करता है वैसे ही मैं भी उनका चिंतन करता हूं। तो हम जितना चित्त भगवान में लगाते हैं, भगवान भी हमारे बारे में चिंता करने लगते हैं, उनका चित्त हम में लग जाता है। तो यह है भक्ति की विशेषता, यह है भगवान के गुण चिंतन, गुण कीर्तन लीलाओं का चिंतन करने की विशेषता। तो इसलिए ब्रजवासी गोपालक जो है रोज घर आते थे तो वन में जो जो घटना बनी, अगासुर को मारा, कभी बकासुर को मारा, कभी कोई देवता आ गए दर्शन के लिए, और आज हमने क्या क्या खेल खेले, सब सारा वृतांत घर आकर के अपने स्वजनों के साथ शेयर करके सुनाते थे। और गोपिया भी आपस में मिलकर इन्हीं गुणों को, इन्हीं लीलाओं का चिंतन करते थे। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो यहां पर कहते हैं, हाँ मैं कह रहा था कि ये जो घटना है अघासुर को मारना, इस श्लोक के अनुसार पोगंड अवस्था में बनी थी, है ना, मृत्यु और पोगंड के बाला, ये पोगंड अवस्था में घटी थी, परंतु सॉरी कौमार अवस्था में घटी थी, परंतु बालकों ने उसको पोगंड अवस्था में कही, अर्थात अघासुर को मारने की जो लीला हुई उसके एक साल बाद ये लीला गोप बालकों ने घर पे आकर कही, है ना। वैसे तो रोज आते थे, शाम को कह देते थे, लेकिन ये घटना एक साल के बाद कही गई, ऐसा श्लोक का अनुवाद। फिर तो प्रश्न होगा कि एक साल कैसे लग गया, है कि नहीं, एक साल कैसे लग गया जो रोज कहा करते थे। और आगे चलकर परीक्षित महाराज भी ये प्रश्न करेंगे कि ये कुछ समझ में नहीं आया, है ना, जब पांच साल के थे तब लीला हुई और सारी लीला तो रोज कह दी जाती थी, और ये जो अघासुर को मारने की लीला है वो एक साल बाद क्यों कही गई। तब आगे सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं कि क्यों एक साल के बाद सुनाएगी, क्योंकि जब भगवान ने अघासुर को मारा और उसके बाद तुरंत ही गोप बाल मित्र जो है भूख लग गई थी, क्योंकि दोपहर हो गया था और सब अपना अपना भाटा लेकर आए, घर से जो मैया ने बांध दिया था वो सब लेकर आए थे। तो वो लेकर के सब यमुना के तट पर भोजन करने के लिए बैठे और भगवान सब अपने बाल मित्रों के साथ, सखाओं के साथ जब भोजन का आनंद ले रहे थे, आपस में एक दूसरे को खिला रहे थे, तो उस समय ब्रह्मा जी जो है वो विस्मित हो गए, ये लीला इसके बाद तुरंत आती है कि भगवान की इस घटना को देखकर, इस लीलाओं को देख करके ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। क्योंकि भगवान जब इस संसार में आते हैं और मनुष्य रूप धारण करते हैं तो बड़े बड़े देवता भी नहीं जान पाते हैं कि क्या कर रहे हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि गुड्ढ कपट मानुष है ना। पांडवों को कहते हैं कि ये जो तुम्हारे साथ कृष्ण है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं, परंतु गुड्ढ कपट मानुष है, एक मनुष्य रूप धारण करके तुम्हारे मामा का पुत्र के रूप में वो तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है। और बड़े बड़े देवता भी इसको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान की जब है ना, भगवान की माया से सब मोहित हो जाते हैं। भगवान की महामाया और योग माया दोनों कार्य करती हैं, है ना। इस ओर से भगवान की महामाया के हम सब लोग प्रभाव में हैं, और दूसरा जब भगवान ऐसी लीला करते हैं तो अपने योग माया से आवृत रहते हैं, है ना। इसलिए बड़े बड़े देवता भी इसको नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान तब दिखाई देंगे या उनकी लीला तब समझ में आएगी जब ये दोनों माया का प्रभाव बढ़ जाएगा, महामाया और योग माया। क्योंकि अपने धाम में भगवान योग माया से आवृत रहते हैं, लीला भी करते हैं तो योग माया से आवृत रहते हैं। इसलिए बालक जैसा कभी रोते हैं, है ना, कभी क्या क्या नहीं करते। तो ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए और उन्होंने सोचा कि क्या ये भगवान है, ये लीला कर रहे हैं पृथ्वी पर अवतार धारण किए असुरों को मारने के लिए, पृथ्वी का भार कम करने के लिए, और ये कैसे करेंगे। जो अपने बाल मित्रों की कभी उनका जूठन खा लेते हैं, कभी उनकी गाली सुन लेते हैं, कभी उनको खेल से निकाल दिया जाता है, ये असुरों का वध कैसे करेंगे और ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो ब्रह्मा की मति भी भगवान की योग माया के कारण मारी गई और वो नहीं समझ पाए। तब उन्होंने सोचा कि चलो मैं इसकी परीक्षा करता हूं। और ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा करने के लिए भगवान के साथ जो गोप बाल मित्र थे उनको चुरा लिया, बछड़े को चुरा लिया और बाल सखाओं को चुरा ले करके उनको अपनी शक्ति से अपने धाम में जाकर सुला दिया। तो अपने धाम में जाकर के जब सुला दिया और फिर से यहां जब देखने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि भगवान तो वही गोप बालक तो वही है, वही बछड़े हैं। क्योंकि उस समय कृष्ण ने ही, क्योंकि भगवान का एक नाम है विष्णु जो सर्वव्यापक है या अपने अनेक रूप धारण कर सकते हैं, तो वैसे ही प्रभु ने उस बाल सखाओ का और बछड़े का रूप धारण किया, जैसा था वैसा है। जैसे उस बालकों ने जैसे वस्त्र पहने थे, उनके मुख का जैसा, उनकी जैसी शकलें थी या उन्होंने जैसा हार पहना था, जैसा कपड़ा पहना था, उनकी जैसी जैसी स्वरूप था वैसा ही भगवान ने धारण किया, जैसा स्वभाव था सब, और वैसे ही उन गायों के बछड़े जो थे उनका भी वैसा है। तो ऐसा रूप जब धारण किया और भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी चकित हो गए, अरे मैं तो इन सबको मेरे लोक में सुला कर आया हूं मेरी शक्ति से, और ये कहां से आ गए। और जब फिर से जाते हैं तो फिर से जाकर वहां भी देखते हैं, यहां आते तो यहां भी देखते हैं। और जब ब्रह्मा जी, भक्तों रहस्य की बात है कि ब्रह्मा जी जब अपने लोक में उनको रखकर यहां आ गए तो यहां एक साल बीत गया, है ना। समय की गणना के अनुसार इस पृथ्वी पर एक साल बीत गया। और जब एक साल बीत गया तो ऐसा वर्णन है कि एक साल तक वही बालक वही बछड़े अपने घर जाते थे, अपने माँ के पास जाते थे, माँ का दूध पीते थे, वो बछड़े गाय का दूध पीते थे, उनका लाड प्यार होता था, वो सारा जो है कृष्ण का होता था, क्योंकि कृष्ण ही सबके स्वरूप में है। और ऐसा कहा जाता है कि उसी समय उन सभी बाल सखाओं का विवाह भी कर दिया गया था, है ना, इसलिए जितनी भी गोपियों का विवाह हुआ था वो सब कृष्ण के साथ हो गया, क्योंकि उस समय कृष्ण ही सर्वव्यापक थे, वही सब बालक थे, वही सब सखा थे, और उस अनुसार सभी गोपियों ने कृष्ण को ही वरण किया। तो इस प्रकार से एक साल बीत गया, और इसीलिए जब ब्रह्मा जी आकर के जा करके आए तो एक साल बीत गया, और फिर ब्रह्मा जी बड़े बड़े श्लोकों से भगवान की स्तुति करते, क्षमा याचना करते कि मुझसे भूल हो गई, मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाया, परंतु तो भगवान ने उनको जल्दी क्षमा नहीं किया। क्यों क्षमा नहीं किया? वैसे सब देवता, इसके बाद इंद्र भी, जब भगवान गोवर्धन उठाएंगे इंद्र भी नहीं समझ पाएंगे कृष्ण को। बड़े बड़े रहस्यपूर्ण बातें हैं कि देवता नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ब्रह्मा को भगवान ने जल्दी क्षमा नहीं किया, लेकिन इंद्र को भगवान ने जल्दी क्षमा कर दिया। लीला को स्मरण करना चाहिए, ऐसा क्यों? वैसे तो देखा जाए तो ब्रह्मा जी ने तो केवल अपने उस गोप बालकों को जाकर के अपने धाम में चुरा लिया था और छिपा दिया था, परंतु इंद्र ने तो उनके ब्रजवासियों को मारने के लिए प्रयास किया, फिर भी उनको क्षमा कर दिया गया, और ब्रह्मा को जल्दी क्षमा नहीं किया। जब आगे चलकर ब्रह्मा जी राधा और कृष्ण का विवाह कराएंगे तब उनको क्षमा कर दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी ने वो काम किया, कृष्ण से उनके भक्तों को अलग कर दिया, है ना, इसलिए भगवान ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करते हैं जो भगवान के भक्तों को उनसे अलग कर देते हैं या विमुख कर देते हैं। परंतु इंद्र ने उनको मारने के लिए कार्य किया, परंतु उस कार्य में भी हुआ क्या? बोले ब्रजवासी जो है कृष्ण के और करीब आ गए, है ना, रोज तो चोरी चुप चुप के मिलना पड़ता था, लेकिन जब पानी चारों ओर आ गया और कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया और कहा कि सब आ जाइए, तो सब गोपी सब लोग जो थे वो कृष्ण के बिल्कुल निकट आ गए, और वो जी भर भर के सबको देख रहे थे। तो अपने भक्तों को निकट ला दिए इंद्र ने, भले जैसा भी काम किया, इसलिए जल्दी क्षमा कर दिया गया, परंतु ब्रह्मा को जल्दी क्षमा नहीं किया। तो मूल बात यह है इस श्लोक के अनुसार कि ब्रजवासी उस बालकों ने इस अघासुर की घटना को एक साल के बाद कहा, वो इसलिए कहा क्योंकि वो जो अघासुर की लीला को जिन भक्तों ने देखा था, जो गोप बालक, वो एक साल तक ब्रह्मा के पास, है ना, और इसलिए जब एक साल के बाद ब्रह्मा उनको लेकर कृष्ण को दे दिए तब, और उस दिन जब वो घर आए तब उन्होंने उस अघासुर की जो मारण लीला का वर्णन किया। तो एक साल के बाद इसलिए कहा क्योंकि एक साल तक तो वो ब्रह्मा जी के लोक में, और जब कहा तो ऐसा ही लगा कि बस ये कल ही लीला हुई है, आज ही हुई है, मतलब क्योंकि उनको भी ये ख्याल नहीं रहा कि हम कहाँ थे कहाँ गए, है ना, भगवान ने, भगवान की माया ने उनको भी सब भुला दिया, विस्मित कर दिया, क्योंकि लीला के आधार पर भगवान की योग माया अपने भक्तों को भी भुला देती है, है ना। कभी कभी यशोदा जब भगवान के विश्वरूप को देख लेती तो लग जाता था कि ये तो भगवान है, परंतु फिर से भगवान अपनी माया से उनको भुला देती थी ताकि वो फिर से, नहीं तो यदि उस बालक को पता चल जाए कि अरे हम ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी हमको चुरा के चले गए थे और कृष्ण ने हमको बचा लिया, या तो हमारे रूप में कृष्ण घर गए थे, है ना, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कृष्ण ने सारा वृतांत जो भुला दिया, कभी कभी अपने भक्तों को लीला के कारण, यशोदा को भी यदि उनको ख्याल रह जाए कि मेरे लाला ने गोवर्धन उठाया, ब्रजवास को यदि सब याद रह जाए कि इतना बड़ा पराक्रम, और पराक्रम सामने होता है तो सबको ख्याल होता ही है ना कि ये किया, लेकिन तिस पर भी वो ब्रजवासी भूल जाते हैं, बोले तुमने तुम्हारे बल पर थोड़ी उठा लिया है गोवर्धन, वो तो यही सोचते हैं, कसु माखन को बल बधो कसु गोपन करी सहाय। अरे लाला तुम में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि तुमने इस गोवर्धन को उठा लिया, तो बोले कसु माखन को बल बधो, ये तो तुम जो ब्रज का माखन खाते हो उसका कुछ बल है, और कसु गोपन करी सहाय, और हम लोगों ने जो सहाय किया थोड़ा थोड़ा उसके कारण उठा लिया। और तो कहते राधा रानी की कृपा से तूने गोवर्धन लिए उठाया, ये तो राधा रानी यहाँ पर थी और उनकी कृपा से तूने गोवर्धन लिए उठा लिया, बाकी तुझ में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो ये भगवान की योग माया से आवृत है, इसलिए इन लीला को भगवान कर सकते हैं, लीला का आस्वादन ले सकते हैं है? तो यही है भगवान की लीलाओं जो यहाँ पर चल रही है, हम सबको चाहिए कि उनका बारंबार चिंतन करें, मनन करें, है ना। जैसे गोप बालकों को भगवान पर अटूट विश्वास था और वो रोज अपने घर आकर के भगवान की लीलाओं को कहते सुनते थे, वैसे हमें भी यहाँ से सुनते हैं तो घर पे जाकर या किसी मित्र के साथ भगवान के गुण रूप लीलाओं को शेयर करना चाहिए, उनके रूप गुण और वीर पराक्रम, उनके स्वभाव, उनका भक्तों पर स्नेह प्रेम, इन सब चर्चा को जब आपस में किया जाता है तो इस चिंतन से जो है हमारी शुद्धि होगी, हम इस संसार से मुक्त होकर भगवान के उसी नित्य संगी जैसे बाल सका है, वैसे हम भी भगवान के संगी बन सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा ग्रंथा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, भगवान की जगन्नाथ सुभद्रा की की।